Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है, उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है, युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था, जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये 11वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। पांचवे क्रूसेड की शुरुआत के लिए हंगरी के राजा ने किसी भी अन्य यूरोपीय राजा से पहले पूरब की ओर बढ़ने की तैयारी कर ली और फिर ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड अपनी सेना के साथ उनके साथ शामिल हो गए। वो अका में इकट्ठे हुए जहां काउंट ब्रेनी राजा थे। इतनी बड़ी संख्या में सेनाओं के अका पहुंचने से वहां अकाल पड़ गया। इसलिए क्रूसेड शासक ने अन्य सेनाओं को मुसलमानों के खिलाफ जल्द ही युद्ध शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। अकाल के दबाव को कम करने के लिए एंड्रयू ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रास्ते में पड़ने वाली मुस्लिम बस्तियों को लूट लिया जाए। युद्ध शुरू करने में ईसाइयों की जल्दबाजी से हैरान सुल्तान अल आदिल ने पूरी ताकत से जवाब दिया। क्रूसेडर्स का मनोबल गिराने के लिए उसने बार बार पीछे हटकर उनके लिए थका देने वाली घेराबंदी की व्यवस्था की। दूसरी तरफ उसने दमिश्क के शासक अपने बेटे अल मलिक अल मुअज्जम को आदेश दिया कि यरूशलम की रक्षा करे। ये जंग जारी रही यहाँ तक कि क्रूसेड सेना की कमान को लेकर आपसी मतभेदों और मुसलमानों के प्रतिरोध से परेशान होकर हमलावर सेना को घेराबंदी खत्म करना पड़ी और अका वापस लौटना पड़ा। हंगरी के राजा एंड्रयू ने वापसी के बाद अपने देश लौट जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड कुछ समय तक फिलिस्तीन में ही रहे और धर्म युद्ध शुरू होने का इंतजार करने लगे। कुछ महीनों के बाद डच बेड़ा अका पहुंच गया। ऐसा माना जा रहा था कि फ्रांसीसी सैनिक भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। अका में क्रूसेडर्स सेनाओं को इकट्ठा होते हुए देख इस शहर के राजा ने इन सेनाओं की मदद से मिस्र पर हमला करने का फैसला लिया। मिस्र पर हमला करने का मकसद अय्यूबी शासक को यरूशलम को उन्हें सौंप देने के लिए मजबूर करना था। दमियाश शहर पर कब्जे के साथ मिस्र पर हमला शुरू होना था, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करके धर्म योद्धा नील नदी के रास्ते काहिरा पहुंच सकते थे। स्पेन के मुसलमानों के साथ युद्ध शुरू होने के बाद फ्रांसीसी और इतालवी धर्म योद्धाओं के पहुंच जाने से क्रूसेडर्स सैनिकों की संख्या 70,000 घुड़सवार और 4,00,000 पैदल सैनिकों तक पहुंच गई। इन सेनाओं ने दमियात शहर को घेर लिया। लीवेंट में अय्यूबी शासक अल आदिल का शासन था और उसने अपने बेटे अल कामिल को मिस्र में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दमियात की घेराबंदी की खबर सुनकर अल कामिल शहर की ओर बढ़ा और पास में ही डेरा डाल दिया, लेकिन उसके पास धर्म योद्धाओं पर हमला करने के लिए पर्याप्त सैनिक या जहाज नहीं थे। अल कामिल के पिता अल आदिल की मौत ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। अल आदिल की मौत से उत्साहित धर्म योद्धा मिस्र की सुरक्षा दीवार को पार करने और अपने जहाज नील नदी में ले जाने में सफल रहे। उन्होंने 1218 की सर्दियों में मिस्र के ठिकानों पर कई हमले किए। क्रूसेडर सेना में पोप के दूत एक अत्याचारी लेकिन उत्साही व्यक्ति पेलागियस ने सेना की कमान संभाली। शहर में अकाल और खाद्य पदार्थ की कमी और शहर के निवासियों को सहायता और रसद भेजने में असमर्थता ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। अल कामिल पीछे हट गया और शहर को क्रूसेडर सैनिकों ने घेर लिया। जब अल कामिल ने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है, तो उसने क्रूसेडर कमांडर को शांति का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर क्रूसेडर घेराबंदी तोड़कर वापस लौट जाते हैं तो वो यरूशलम को क्रूसेडरों को सौंप देगा। पोप के दूत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और शहर पर कब्जा करने पर अड़ा रहा। अल कामिल ने शांति का प्रस्ताव फिर दोहराया। और इस बार न सिर्फ यरूशलम बल्कि मुसलमानों के पास मौजूद ट्रू क्रॉस भी क्रूसेडरों को लौटाने पर सहमति जताई। इस बार भी पोप के दूत ने अन्य सेनापतियों की इच्छा के विपरीत शांति समझौते को स्वीकार नहीं किया। पोप के दूत द्वारा शांति समझौते को स्वीकार न करने का मुख्य कारण क्रूसेडरों की भविष्य की प्रगति के प्रति उनकी आशा थी। इस समय क्रूसेडरों के बीच इस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही थी कि क्रूसेडर सेनाएं भविष्य में पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेंगी, फिर वे पूरे सीरिया पर कब्जा कर लेंगी और अरब प्रायद्वीप पर कब्जा करके मक्का शहर को नष्ट कर देंगी। इस प्रकार इस्लाम का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार इस जीत के बाद ईसा मसीह का आगमन होगा और भौतिक जगत का अंत हो जाएगा। इस्लामिक क्षेत्र पर चंगेज खान के आक्रमण की खबर आने से इन भविष्यवाणियों को बल मिला, क्योंकि इन भविष्यवाणियों में किंग दाऊद को पूरब से मुसलमानों पर हमला करना था, इस्लामी खिलाफत के केंद्र को ध्वस्त करना था और फरंगी ईसाइयों तक पहुंचना था। उन्होंने चंगेज खान को किंग दाऊद के रूप में देखना शुरू कर दिया था। दमियाद शहर के रक्षक अकाल और बीमारी के कारण अपनी शक्ति खो चुके थे और शहर की दीवार के कुछ हिस्सों की रक्षा के लिए कोई नहीं था। इस स्थिति के बारे में सुनकर पेलागियस ने शहर पर दो तरफ से हमला किया। उसे कोई खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे शहर में बीमारी और अकाल व्याप्त था। शहर के निवासियों के पास मुर्दों को दफनाने के लिए भी साधन नहीं थे। शहर पर कब्जा करने के बाद क्रूसेडरों ने एक दिन और एक रात तक शहर में कत्लेआम किया और शहर की 300 प्रतिष्ठित हस्तियों को बंधक बना लिया। उन्होंने छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया और उन्हें पादरियों को सौंप दिया ताकि वो चर्च में सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने अन्य पुरुषों और महिलाओं को भी बंदी बनाकर गुलामों के रूप में बेच दिया और क्रूसेडर सैनिकों ने शहर की सारी संपत्ति लूट ली। दमियाद पर क्रूसेडरों के कब्जे के साथ ही अलकामिल को अपनी सेना को मजबूत करने का अवसर मिल गया और उसने फ्रांसीसी बंदरगाहों के साथ क्रूसेडरों के संचार मार्ग को काट दिया। इधर पोप के दूत ने काहिरा पर चढ़ाई करने का फैसला किया। क्रूसेडर सेना के काहिरा के लिए रवाना होने से पहले ब्रिगनोल और पोप के दूत के बीच मतभेद ने क्रूसेडर सेना को विभाजित कर दिया। रन सीमन कहते हैं, ये मतभेद इस हद तक बढ़ गया कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही धीरे धीरे क्रूसेडर सेना का ढांचा छिन भिन हो गया। पोप ने दमियात में तैनात क्रूसेडरों से वादा किया कि जर्मन सम्राट अतिरिक्त बल लेकर आएंगे। उन्होंने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन पोप के वादे के विपरीत सहायता पहुंचने की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। पोप को खुद भी उम्मीद थी कि फ्रेडरिक एशिया आएंगे, लेकिन ये प्रतीक्षा व्यर्थ गई। जैसा कि इतिहास गवाह है, फ्रेडरिक की प्रेरणा धार्मिक कट्टरता से ज्यादा महत्वाकांक्षा थी। अल कामिल ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दमियात पर कब्जा करने के बाद क्रूसेडर काहिरा की ओर बढ़ेंगे, इसलिए उसने अल मुअज्जम को सीरिया भेजा ताकि वो अका पर हमला करके दमियात के क्रूसेडरों का ध्यान उधर आकर्षित कर सके। खुद उसने अन्य क्षेत्रों से सैन्य सहायता प्राप्त करके क्रूसेडरों के साथ एक बड़े टकराव की तैयारी शुरू कर दी। क्रूसेडर सेना नील नदी के रास्ते काहिरा की ओर रवाना हुई। रास्ते में सेना एक द्वीप पर पहुंची। उसी समय अल मुअज्जम की सेना अपने भाई की सहायता के लिए निकल पड़ी। मिस्र की फौज मजबूत और एकजुट हो चुकी थी। उसने क्रूसेडर सेना को घेर लिया। क्रूसेडर जो तत्काल विजय की आशा से आए थे, युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त रसद अपने साथ नहीं लाए थे, इसलिए वो एक महीने भी नहीं टिक सके। अल कामिल के आदेश पर नील नदी का पानी क्रूसेडर सेनाओं के ठिकाने की ओर मोड़ दिया गया। दलदली भूमि की वजह से क्रूसेडर पीछे हट गए और बढ़ते पानी के कारण उनके सामने वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था, इसलिए आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पोप के दूत पेलागियस ने यह स्थिति देखकर अल कामिल से शांति की याचना की। अल कामिल ने इस शर्त पर शांति स्वीकार कर ली कि क्रूसेडर पूरी तरह से मिस्र छोड़ दें। दोनों के बीच 8 साल तक शांति बनाए रखने पर भी सहमति बनी। अल कामिल ऐसी स्थिति में थे कि अपनी सेना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना क्रूसेडर सेना को नष्ट कर सकते थे। एक लेखक का मानना है कि अल कामिल ने यह फैसला इसलिए किया था क्योंकि वो यूरोपीय ईसाइयों के इंतकाम से चिंतित थे, लेकिन ये कोई ठोस कारण नहीं हो सकता क्योंकि क्रूसेडर अभियान अय्यूबियों के लिए कोई नई बात नहीं थी, जिन पर यूरोपीय क्रूसेडरों ने बार बार हमले किए थे। अल कामिल के इस फैसले का कारण सिर्फ इस्लामी शांतिवाद की भावना थी, जैसा कि हमने अल आदिल के व्यवहार में और उससे पहले सलाहुद्दीन अल अयूबी और अन्य मुस्लिम शासकों का बर्ताव देखा था। इस तरह क्रूसेड्स का पांचवा चरण मुसलमानों की जीत और धर्म योद्धाओं की पराजय के साथ समाप्त हुआ। धर्म युद्धों के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने पर यह प्रश्न उठता है कि मुसलमानों ने ईसाइयों या उनके धर्म के साथ ऐसा कौन सा अन्याय किया था कि उनके धर्म के दावेदारों ने बार बार मुस्लिम क्षेत्रों पर हमला किया। इनमें से किसी भी युद्ध के सूत्राधार मुसलमान नहीं थे बल्कि यूरोपीय धर्मयोद्धा थे, जिन्होंने पवित्र भूमि के बहाने मुस्लिम क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण किए। यूरोपीय युद्धों की ये श्रृंखला पूरी तरह से पश्चिमी लोगों के लालच और फिजूल खर्ची की भावना पर आधारित है। मुसलमानों ने हमेशा ईसा मसीह के अनुयायियों का सम्मान किया था और उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की थी। यरूशलम का भी मुसलमान ईसाइयों से ज़्यादा सम्मान करते थे, इसलिए ये समझना आसान है कि मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों की इन जंगों का असली कारण लालच, दबाव और आंतरिक समस्याएं थीं। अगले भाग में हम इस युद्ध के परिणामों पर चर्चा करेंगे।